نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں سے آج ہم جن صحابی کے بارے میں پڑھیں گے، ان کا نام ہے حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے. دیکھتے ہیں کہ آخر ان کی زندگی کی کیا چیزیں تھیں جن کو آج ہم اپنے لیے عمل کے لیے سنیں اور اسی کے مطابق پھر اپنے عمل کو ڈھال سکیں. لوہے کی زنجیر کی دو کڑیوں کے درمیان کم ہی اس قدر مضبوطی اور قرب پیدا ہوا ہوگا جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ کے باہمی روابط و تعلقات مضبوط و مستحکم تھے. ابو سفیان رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اس طرح کہ ان کا باپ حارث اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ دونوں حقیقی بھائی تھے، اور عبد المطلب کی اولاد میں ان دونوں کو نمایاں حیثیت حاصل تھی. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے. وہ اس طرح کے دائی حلیمہ سعدیہ نے دونوں کو ایک ساتھ دودھ پلایا تھا. حضور علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے یہ آپ کے بڑے گہرے دوست تھے، شکل و شباہت بھی آپ سے ملتی جلتی تھی. آپ نے ایسی قربت دیکھی اور نہ سنی ہوگی جو ابو سفیان بن حارث اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پائی جاتی تھی. اس پس منظر میں غالب امکان یہی موجود ہونا چاہیے تھا کہ یہ سب سے پہلے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے، آپ کی اطاعت قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے بالکل اس کے برعکس طرز عمل اختیار کیا. جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی، آخرت سے انہیں ڈرانا شروع کیا، تو ابو سفیان بن حارث کے دل میں کینہ و بغض کی آگ بھڑک اٹھی. جب کبھی قریش نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے کا تہیہ کیا، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ابو سفیان نے جلتی پر تیل ڈالنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑائی کی آگ کو بھڑکایا. جب کبھی قریش نے مسلمانوں کو کسی اذیت میں مبتلا کیا، ابو سفیان نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ایک دفعہ ابو سفیان کے شیطانی ذہن نے اسے اس بات پر اکسایا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کرے، یعنی آپ کے خلاف باتیں کرے، لہٰذا اس نے آپ کی حج میں نہایت ہی بےہودہ قسم کے شعر کہے. یہ تھا پہلا حصہ. اس کا عنوان ہے نبوت سے پہلے کی دوستی دشمنی میں بدل گئی. ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ بعض دفعہ انسان کو جن لوگوں کی امید ہوتی ہے کہ وہ نیکی کے سفر میں اس کا ساتھ دیں گے، وہی لوگ اس کے مخالف بن جاتے ہیں. اس حصے سے جو باتیں ہم نے سیکھی وہ یہی تھی کہ ضروری نہیں کہ انسان کسی کا ہم شکل ہو تو ہم خیال بھی ہو. دوسری بات سیکھی کہ خاندان والے اکثر بات کو نہیں مانا کرتے یا فوراً نہیں مانتے. اگلی بات پتہ چلی کہ گہرے دوستوں کے اندر بھی کینہ اور بغض پیدا ہو سکتا ہے. اگلی بات اس میں پتہ چلی کہ حالات کسی وقت بھی بدل سکتے ہیں. جو آج کا گہرا دوست ہے وہ کل کا دشمن بن سکتا ہے، لہٰذا انسان کو تعلقات قائم کرتے وقت میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. آگے دیکھتے ہیں ابو سفیان کی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کا دور 20 سال پر محیط ہے. اس دوران آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس نے ہر حربہ استعمال کیا اور مسلمانوں کو تکلیفیں دینے میں کوئی کوشش نہ چھوڑی، یعنی ہر ممکن کوشش کی. اس حصے کو عنوان لکھیے عداوت کا طویل دور. اس سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے कि जब बात समझ ना आए तो साल साल तक इंसान एक ही बात को ना समझे बगैर भी गुजार सकता है। दूसरी बात पता चली कि असल ताकत दिल की है। जिस चीज़ पे दिल आ जाता है इंसान उसके दिफा की कोशिश करता है, और जिस चीज़ से दिल हट जाए वो चीज़ अच्छी होने के बावजूद भी अच्छी नहीं लगती। फतेह मक्का से थोड़ा ही अरसा पहले अबू सुफियान की तरफ खत लिखा गया और इसमें इसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी गई। इनके इस्लाम लाने के भी अजीबो गरीब दास्तान है जो सीरत और तारीख की किताबों में अब तक महफूज है। हम ये कहानी अबू सुफियान ही की जुबानी सुनते हैं क्योंकि वह अपने शऊर और एहसासात की रोशनी में बेहतर तौर पर अपने इस्लाम लाने की मंजर कशी कर सकते हैं। बयान करते हैं कि जब दीन इस्लाम मुस्तहकम हो गया और इसने लोगों के दिलों में जगह बना ली, रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का मुकरमा पर चढ़ाई की खबरें आम फैल गई तो मुझ पर ज़मीन अपनी कुशादगी के बावजूद तंग हो गई। मैंने सोचा अब मैं कहाँ जाऊँगा, किसका साथ इख्तियार करूँगा। फिर मैं अपने बीवी बच्चों के पास आया, इनसे कहा मक्का से भाग निकलने के लिए फौरन तैयार हो जाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ अन करीब फातिहाना अंदाज में मक्का मुअज्जमा में दाखिल हो रहे हैं। मुसलमानों ने आकर मुझे पकड़ लिया तो यकीनन वो मुझे कत्ल कर देंगे। अहले खाना ने मेरी बातें गौर से सुनकर कहा, क्या आप नहीं देख रहे कि अरबो अजम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतात कबूल कर ली है और इनके दीन को कबूल कर लिया है। एक आप हैं कि अपनी अदावत, ज़िद और हठधर्मी पर डटे हुए हैं, हालांकि नबुवत से पहले आप इनके गमगुसार और मुआविन थे। अहले खाना मुसलसल दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रग़बत दिलाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए मेरा सीना खोल दिया। इस हिस्से का टॉपिक था घर वालों की कोशिश से इस्लाम के लिए सीना खुल गया। हमारे लिए अमल की बातें हैं कि इंसान एक ख़ास वक्त तक रिजिस्ट करता है, फिर बिलाखिर हक के आगे उसको झुकना ही पड़ता है। दूसरी बात पता चली कि जब मुसलमानों को फतह होती है तो कुछ लोग उस पे नाखुश भी होते हैं। अगली बात पता चली कि इंसान के दीन की तरफ आने में उसके घर वालों का बहुत गहरा हाथ होता है। इंसान अपने घर वालों से बहुत असर कबूल करता है, इसलिए अगर कभी भी कहीं कोई कमी नज़र आए तो इंसान कहता रहे, हो सकता है कि किसी लम्हे भी अल्लाह ताला उसका दिल खोल दे। अगली बात पढ़ते हैं। मैं वहाँ से उठा और अपने ग़ुलाम से कहा, मेरी ऊँटनी और घोड़ा तैयार कर दो। मैंने अपने बेटे जाफ़र को हमराह लिया और हम तेज़ रफ्तारी से अबवा बस्ती की जानिब चल निकले। ये बस्ती मक्का और मदीना के दरमियान वाक़े थी। मुझे ये बताया गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बस्ती में पड़ाव किया है। जब मैं बस्ती के करीब पहुंचा तो मैंने अपना भेस बदल लिया ताकि कोई मुझे पहचान न सके। मेरे जी में आया कि अगर किसी ने पहचान लिया तो मैं रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचने से पहले ही कत्ल कर दिया जाऊंगा। अभी अबवा बस्ती 1 मील दूर थी कि मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया। मुसलमानों के काफ़ले मक्का मुकरमा की जानिब रवानदवा थे। मैंने इनसे डरते हुए रास्ता बदल लिया कि कहीं कोई मुझे पहचान न ले। इसका उन्वान लिखेंगे, जब दिल ने माना तो हर रुकावट दूर हो गई। होता भी ऐसे ही है, दिल न माने तो इंसान उजर तराशता रहता है। जिस दिन दिल किसी बात को मान ले वही चीज़ इंसान के लिए फिर ऐसी चीज़ बन जाती है कि जिससे इंसान अपने आप को फिर अल्लाह के दीन की तरफ ले आता है। इसमें हमने ये भी सीखा कि नबी सल्लम के पास पहुंचने से पहले कत्ल हो जाने के खौफ ने इनको अपनी पहचान ख़त्म करने पे मजबूर किया। दिल की बात है ना, 20 साल तक मुखालफत रही और अब बात समझ आई तो अब बेचैनी क्या थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपसे मिले बगैर चला जाऊं। असल चीज़ फिर दिल है। दिल जिसकी तरफ झुकता है इंसान पूरे का पूरा उसी की तरफ झुकने लगता है। अचानक मैं क्या देखता हूँ कि रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से अपनी सवारी पर नमूदार हुए तो मैं दौड़कर आपके सामने जा खड़ा हुआ। चेहरे से निकाब उठाया, आपने देखते ही मुझे पहचान लिया, लेकिन आपने नजरें फेर ली और चेहरे मुबारक दूसरी तरफ कर लिया। मैं भी पहलू बदल कर दोबारा आपके सामने आ खड़ा हुआ। आपने फिर अपना रुख तब्दील कर लिया और ये अमल आपने कई बार दोहराया। इसको उन्वान लिखिए, नबी पाक ने रुख मोड़ लिया। इस हिस्से से जो बात सीखी हमने वो क्या थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे। ये मोहब्बत भरा दिल लेके आए हैं, लेकिन अभी तक इनके इस रवैये से आप ये नहीं समझ सके कि ये मुसलमान हो चुके। दूसरी बात इससे पता चली कि अल्लाह के नबी सल्लम इनको पहचान गए। बस दफ़ा एक इंसान बचपन में किसी के साथ रहता है, फिर जुदा हो जाता है, लेकिन बड़ी उम्र में जब दोबारा मिले तो जो लोग बहुत गहरी सोच रखते हैं वो तो ऐसे लोगों को पहचान लेते हैं, और जो आम सतही सोच के लोग होते हैं वो ऐसे वक्तों में पहचानते नहीं। अल्लाह के नबी सल्लम के फहम और फरासत की तरफ इशारा। आगे देखते हैं, जब मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहा था, मेरे दिल में ज़रा बराबर शक न था कि आप मेरे इस्लाम कबूल करने से खुश होंगे और आपके सहाबा भी खुश होंगे। लेकिन मुसलमानों ने जब रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे साथ बेरुखी का अंदाज़ देखा तो उन्होंने भी अपने तेवर चढ़ा लिए और सभी ने मेरे साथ बेइत्नाई बरती। हजरत अबू बकर सिद्दीक मिले, उनके भी तेवर बदले हुए थे। उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हो नजर आए, वो इनसे भी ज़्यादा गज़बनाक दिखाई दे रहे थे, बल्कि उन्होंने मेरे खिलाफ़ एक अंसारी को उकसाया तो इसने मुझे जली कुटी सुनानी शुरू की। कहने लगा, दुश्मन खुदा तो वही है जिसने रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को अजियत पहुंचाई। तूने आपकी अदावत मेरी चोटी का जोर लगाया। ये अंसारी मुझे मुसलसल बुलंद आवाज़ डांट पिलाए जा रहा था और मुसलमान कनखियों से मेरी दुर्गत बनती देख रहे थे। इतने में मुझे मेरे चचा अब्बास नजर आए। मैंने झपट कर इनका दामन पकड़ा और इल्तजा की, चचा जान मेरी मदद कीजिए। मेरा ये ख्याल था कि रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इस्लाम कबूल करने से खुश होंगे, लेकिन मेरा जो हाल हो रहा है आप देख रहे हैं। आप ही इनसे सिफारिश करें कि ज़राह करम मुझे माफ़ कर दें। मेरी इल्तजा सुनकर चचा बोले, बहुदा मैं तो किसी मुनासिब वक्त पर ही रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर सकूंगा, क्योंकि मैंने बचश्म खुद देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हैं। सच्ची बात है, मेरे दिल पर इनका बहुत ज़्यादा रोब और दबदबा है। मैंने अर्ज़ की, चचा जान आपने भी मेरी मदद न की तो मेरा क्या बनेगा, मैं कहाँ सर छुपाऊँ। वो बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता। चचा जान की ये बेरुखी देख कर कुछ न पूछिए कि मुझ पर क्या बीती। मैं गमो अंदोह के मारे निढाल हो गया। थोड़ी ही देर बाद मुझे मेरे चचाजाद भाई अली बिन अबी तालिब दिखाई दिए। मैंने इनसे कहा, आप ही इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दें, मेरी मदद करें, यहाँ कोई भी मेरी सुनने वाला नहीं। तो उन्होंने भी मुझे चचा अब्बास जैसा जवाब दिया। मैं दोबारा चचा अब्बास की तरफ पलटा और अर्ज़ की, चचा जान अगर आप ये नहीं कर सकते कि रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुझ पर नरम हो जाए, कम से कम इस अंसारी को रोक दें जो मुझे काफ़ी देर से बेनुक्त सुनाए जा रहा है और लोगों को मेरे खिलाफ़ भड़का रहा है। उन्होंने पूछा, वो कौन है? मैंने बताया, नईमान बिन हारिस नज्जारी है। चचा जान ने इसकी तरफ पैगाम भेजा और कहा, देखो नईमान, ये अबू सुफियान रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचाजाद भाई है और मेरे हकीकी भाई का लखते जिगर है। अगर आज हजूर अलैहिस्सलाम इस पर नाराज़ हैं तो कल राजी हो जाएंगे। आप इसके खिलाफ अपनी ज़ुबान बंद करें। चचा जान की बात सुनकर वो मुझे बुरा भला कहने से बाज आ गया। इस हिस्से का उनवान है, नबी पाक की बेरुखी बर्दाश्त ना की। इससे अमल की बात जो पता चलती है, पहली बात है कि सहाबा कराम अल्लाह के नबी सल्लम के नक्शे कदम पे चलते थे। किसी चीज़ से अगर आप बेइत्नाही बरतते तो वो भी बरतते, अगर आप इल्तफात फरमाते तो लोग भी फरमाते, और अगर आप उससे हट जाते तो लोग भी हट जाते। ये एक ख़ास डिसिप्लिन दिखता था। दूसरी बात है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने मुँह से कुछ नहीं कहा। इसके बारक्स कुछ लोग آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان مختلف طرح کے ہوتے ہیں، بعض جذباتی نوعیت کے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں غصے میں آتے ہیں، لیکن بعض لوگ دل میں بات رکھتے ہیں اور اس کا اظہار بہت ہی کم کرتے ہیں۔ دوسری بات پتہ چلی کہ اپنوں کی بے اعتنائی زیادہ چبھتی ہے۔ دوسروں کا بھی دکھ تو ہوتا ہے، لیکن اپنوں سے چونکہ امید اچھی ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی کوئی ایسا رویہ اختیار کریں جس سے انسان کا دل دکھے تو وہ پہلے سے زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حجفہ مقام پر فروکش ہوئے، خیمے نصب کر دیے گئے، آپ اپنے خیمے میں داخل ہوئے، میں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ باہر خیمے کی دہلیز پر بیٹھ گیا، میرے پاس میرا بیٹا جعفر کھڑا رہا۔ خیمے سے نکلتے ہوئے جب آپ نے مجھے دیکھا، نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا روئے مبارک دوسری طرف کر لیا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری، مسلسل آپ کو راضی کرنے کے لیے کوشاں رہا۔ راستے میں جہاں بھی آپ پڑاؤ کرتے، میں آپ کے خیمے کے باہر مسکین بن کر بیٹھ جاتا اور میرا بیٹا جعفر میرے پاس کھڑا رہتا۔ آپ جو ہی مجھے دیکھتے، نفرت سے چہرہ انوار دوسری طرف پھر لیتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ جب میرے لیے عرصہ حیات تنگ ہو گیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا، بخدا یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر راضی ہو جائیں گے، ورنہ میں اور میرا یہ بیٹا اوندھے منہ زمین پر بھوکے پیاسے لیٹے رہیں گے، یہاں تک کہ ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ جب میری یہ حالت رسول اقدس کو معلوم ہوئی، آپ کے دل میں رقت پیدا ہوئی، آپ اپنے خیمے سے باہر نکلے، مجھے شفقت بھرے انداز سے دیکھا، میرے جی میں آیا کہ کاش کہ آپ مسکرا دیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، میں آپ کی رکاب پکڑے ہوئے تھا۔ جب آپ بیت اللہ کی طرف چلے، میں بھی آپ کے آگے آگے دوڑتا ہوا چلا، غرض کہ آپ جدھر کا رخ کرتے، میں بھی کسی صورت آپ سے جدا نہ ہوتا۔ اس حصے کو عنوان لکھیے، عرصہ حیات تنگ ہو گیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرے تو اس کی بے روحی انسان کو بہت ہی زیادہ کھولتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اگر دل میں اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور انسان کے لیے راستے بنانے لگتے ہیں۔ اگلی بات پتہ چلی کہ انسان نے جس کو خوش کرنا ہوتا ہے اس کے لیے پھر ہر ممکن کوشش کر لیتا ہے، چاہے بھوک کی وجہ سے زمین پر لیٹنا ہی کیوں نہ ہو، اور جب انسان کسی کی کیئر نہیں کرتا تو چاہے وہ اچھی بات کہے یا بری، انسان اس کو کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ آگے دیکھتے ہیں، غزوہ حنین میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عرب نے اپنی قوت جمع کر دی اور آپ کے مقابلے کے لیے اتنی زبردست تیاری کی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی تیاری نہ کی۔ کفار نے یہ پختہ عزم کر لیا تھا کہ اس دفعہ مسلمانوں پر ایک فیصلہ کن ضرب لگائی جائے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے برسر پیکار ہونے کے لیے اپنے جانثار صحابہ کو لے کر سر بکف میدان کارزار کی طرف نکلے، تو میں بھی ساتھ ہو لیا۔ جب مجھے مشرکین کا جمع غفیر دکھائی دیا، میں نے دل میں کہا، خدا کی قسم آج میں سارے دھونے دھو دوں گا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آج میری کارکردگی دیکھ کر یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آج اللہ تعالیٰ بھی مجھ پر راضی ہو جائے گا۔ جب دونوں فوجوں میں گھمسان کا رن پڑا، پہلے مرحلے پر مشرکین کا پلہ بھاری ہو گیا، وہ مسلسل مسلمانوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، قریب تھا کہ یہ شکست فاش سے دوچار ہوتے۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں اپنے گھوڑے پر سوار دشمن کے مقابلے میں چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، آپ اپنی تلوار سے شیر کی مانند اپنا بھی دفاع کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کا بھی۔ اس نازک موقع پر میں نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی، میں نے اپنی تلوار کی نیام کو توڑ دیا اور سر بکف میدان میں نکل آیا۔ آج میری دلی تمنا یہ تھی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے میں قربان ہو جاؤں۔ چچا عباس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھام رکھی تھی اور یہ آپ کی دائیں طرف کھڑے تھے، اور میں نے حضور علیہ السلام کی بائیں طرف مورچہ تھام لیا، میرے دائیں ہاتھ میں تلوار تھی۔ जिससे मैं रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कर रहा था, और बाएं हाथ से मैंने आपके घोड़े की लगाम को थाम रखा था। जब रसूल अकदस ने मुझे झपटते हुए देखा तो चचा अब्बास से पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया, आपका चचा जाद भाई अबू सुफियान है, आज आप इसे माफ़ कर दें, इस पर राजी हो जाएं। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, आज मैं इस पर राजी हूँ, और साथ ही ये दुआ की, इलाही इसे हर वो अदावत माफ़ कर दे जो इसने मेरे साथ रवा रखी। रसूल अकदस की रज़ा को देखकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। मैंने रकाब में आपके पाँव को बोसा दिया। आप मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और इरशाद फरमाया, मेरे भाई आगे बढ़ो, दुश्मन को तहे तेह कर दो। बस आपका ये फरमान सुनकर दुश्मन पर टूट पड़ा और मुसलमानों को साथ मिलाकर ऐसा जोरदार हमला किया कि दुश्मन के पांव उखड़ गए। हमने 3 मील तक दुश्मन को पीछे धकेल दिया और इनकी इज्तमाईयत को मुख्तलिफ सिमतों में बखेर कर रख दिया। इस हिस्से का उन्वान है, इलाही इसे माफ़ फरमा। कितने खुशकिस्मत है कि अल्लाह के नबी से ये दुआ मंगवाई। इस हिस्से से जो बातें मालूम होती हैं, पहली बात यह है कि बाज़ दफ़ा इंसान अपनी तैयारी पे मान करता है, लेकिन फैसला वही होता है जो अल्लाह का हुक्म हो। दूसरी बात पता चली कि जब इंसान नेकी की तरफ आता है तो उसका अमली इजहार भी उसके मुख्तलिफ कामों से होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने कहा कि आज मैं इस जंग में खूब नेकियां करके दिखाऊंगा या बड़े बड़े काम करके दिखाऊंगा। अगली बात पता चलती है कि सिर्फ बातों से किसी को खुश नहीं किया जा सकता, इसके लिए अमल करके दिखाना पड़ता है। फिर अगली बात हमने सीखी कि जब इंसान इस्लाम की तरफ आता है तो उसकी सलाहियतें भी इस्लाम की तरफ आने लगती हैं। जब कुफर पे होता है तो उसकी खूबियाँ भी उसके हक में बुरी बनती हैं, जबकि वो बुराई की तरफ उनको लगाने लगता है। अगली बात हमने इसमें सीखी कि अल्लाह ताला ने इनको नेकी का मौका दिया और इन्होंने उसको कबूल किया। ग़ज़वे हुनैन के बाद अबू सुफियान बिन हारिस रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के मुस्तहिक होकर आसूदा ज़िंदगी बसर करने लगे और आपके अख़लाक़े हसना से मुस्तफ़ीज़ होने लगे। लेकिन ये अपनी निगाहें शर्मिंदगी की बिना पर हजूर अलैहिस्सलाम के सामने झुकाए रखते। अबू सुफियान को जब वो दिन याद आते जो उन्होंने ज़माने जाहिलियत में नूरे इलाही और किताब मुकद्दस कुरान पाक से महरूमी की सूरत में गुजारे, तो ज़ारों की तार रोने लगते। लेकिन अब ये दिन रात कुरान पाक की तिलावत में मगन रहने लगे और इसकी आयात पर गौर व तदब्बुर करने लगे, कुरान हकीम के अहकाम पर अमल पैरा होने के लिए कमर बस्ता हो गए। दुनियावी जेब व जीनत को खैरबाद कह दिया और अल्लाह ताला के साथ लौ लगा ली। एक दिन नबी सल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए, अबू सुफियान पहले से वहाँ पर मौजूद थे। आयशा रजी अल्लाह अन्हा से मुखातिब हुए और कहा, क्या तुम जानती हो ये कौन है? अर्ज़ किया, नहीं। आपने फरमाया, ये मेरा चचा साद भाई अबू सुफियान बिन हारिस है। आजकल ये मस्जिद में सबसे पहले आता है और सबसे बाद जहाँ से जाता है, और रास्ते में चलते हुए अपनी निगाहें ज़मीन पर गाड़े रखता है, निगाह उठाकर नहीं देखता और ना ही इधर उधर झांकता है। इस हिस्से का उन्वान है, शर्मिंदगी की बिना पर निगाहें झुकाए रखते। ये पहला हिस्सा था। अगले हिस्से का उन्वान लिखेंगे, किताबे मुकद्दस से महरूमी पर आंसू निकल आए। हमारे भी निकलते हैं। इससे पता चलता है कि इंसान जब दीन इस्लाम की तरफ आता है तो उसको पिछले दिनों पे हसरत होती है, और वो दिन जो उसने अल्लाह की याद के बग़ैर गुजारे होते हैं, उन दिनों में इंसान को अफसोस और हैरत हसरत होती है कि मैंने उस वक्त को क्यों ज़ाया किया। अगली बात पता चली कि जब इनके अंदर को खूबी आई तो अल्लाह के नबी ने फिर इनकी तारीफ़ भी की। इससे पता चलता है कि आप किसी की झूठी तारीफ़ नहीं करते थे, जब कोई डिज़र्व करता तो तभी उसको उस चीज़ के अंदर तैयार भी करते और तभी उसकी तारीफ़ करते, और ऐसी ही तारीफ़ का फिर फ़ायदा भी होता है और दूसरों को उसका असर भी फिर ज़्यादा होने लगता है। आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं। रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वसाल हुआ, अबू सुफियान इतना रोए जैसे कोई माँ अपने अकलौते बेटे की वफात पर नौहा कुना होती है, या जैसे कोई दोस्त अपने अजीज दोस्त की वफात पर आहों बुका करता है, और हुस्नो मलाल में डूब कर ऐसा मरसिया कहा जिससे सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। हजरत फारूक आजम के दौरे खिलाफत में अबू सुफियान ने जब अपने आप को मौत के धाने पर महसूस किया तो अपने हाथों अपनी कब्र खोद दी। कब्र को खोदे अभी 3 ही दिन गुजरे थे कि मौत का वक्त आ गया। यूं मालूम हुआ जैसे कि इन्हें पहले ही बता दिया गया हो। ये अपने बीवी बच्चों और दीगर खानदानी अफराद से मुखातिब होकर फरमाने लगे, मुझ पर रोना नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है अल्लाह के फजलो करम से किसी गुनाह का इर्तकाब नहीं किया। बस इसी जुमले का अदा करना था कि इनकी पाकीज़ा रूह कफ़ अंसरी से परवास कर गई। इनकी मौत को अहले इस्लाम के लिए नाकाबले तलाफी नुकसान करार दिया गया। इसका उन्वान लिखेंगे, मौत से पहले मौत की तैयारी। इससे पता चलता है कि नबी सल्लम से ये शदीद मोहब्बत करते थे, और दूसरी बात यह है कि अपनी मौत के लिए भी तैयार थे। अपने हाथों अपनी कब्र खोदना ये बड़े हौसले की बात है। इंसान का इस बात पर यकीन होने की दलील है कि मुझे किसी भी लम्हे अगली दुनिया में पहुंचना है, और इसी से पता चलता है कि जो अगले जहान में जाने के लिए तैयारी कर लेता है फिर उसको मौत का एहसास जो है वो गमगीन नहीं करता। हकीकत यह कि ऐसे लोगों के हालात पढ़कर इंसान को अपनी फिक्र लग जाती है कि क्या हमारी ज़िंदगी में भी यही एहसासात मौजूद हैं, क्या हमें भी लगता है कि हमें भी किसी लम्हे मौत आने वाली है और हम उस मौत की सूरत में अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो जाए और इनको जन्नत के आला बाग़ों में जगह दे। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।